ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का हिंदी टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग इन एक्सट्रीमली नेगेटिव सिचुएशंस। तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें जब बहुत ही नेगेटिव है सिचुएशन। तो शुरुआत एक कहानी से करेंगे। एक बार एक ग्रैंड मदर होती है और उसकी जो पोती होती है बहुत निराश होके अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। ये क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तो दूसरी प्रॉब्लम चालू होती, दूसरी नहीं ख़त्म होती तो तीसरी रेडी होती है, तीसरी नहीं ख़त्म होती तो चौथी रेडी होती है। ऐसे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम ही आती रहती है। मैं ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल करूँ, हाँ क्या करूँ मैं। तो ग्रैंड मदर उसको किचन में लेके जाती है और तीन पतीले रखती है और उसमें पानी डालती है। पहले में डालती है कैरेट्स, गाजर, दूसरे में डालती है अंडे, कच्चे अंडे, और तीसरे में डालते हैं कॉफ़ी बीन्स। और पानी डाल के बर्नर चालू करती है और पानी को बॉईल करती है, 20 मिनट तक बॉईल करती है। 20 मिनट होने के बाद बर्नर्स बंद करती है और तीन प्लेट में गाजर को बाहर निकालती है, अंडों को बाहर निकालती है और कॉफ़ी बीन्स का जो पानी होता है उसको रखती है। और उसको पूछती है बच्ची को कि तुमको क्या दिख रहा है। तो वो कहती है कैरेट्स, एग और कॉफ़ी बीन्स का पानी। तो दादी माँ जो होती है ग्रैंड मदर, वो पूछती है कि ठीक से देखो क्या दिख रहा है। तो उसको फिर भी समझ में नहीं आता है। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है देखो गाजर जो था ना वो पहले कड़क था और पानी में जब उसको बॉयल किया तो वो नरम हो गया, और जो अंडे थे ना पहले थिन कवरिंग थी, अंदर लिक्विड था, अभी अंदर से कठोर हो गया, और जो कॉफ़ी बीन्स थी वो तो पानी में घुल मिल गई। तो बच्ची पूछती तो इसका पॉइंट क्या है। तो दादी माँ कहती है कि तीनों को सिचुएशन एक ही थी, गर्म पानी 20 मिनट्स बॉइलिंग तीनों को था, लेकिन गाजर जो था वो नरम हो गया, वीक हो गया। तो ज़िंदगी में भी तीन रिएक्शन होते हैं लोगों के। जब बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, तो या तो हम वीक हो जाते हैं, जैसे गाजर जो था वो नरम हो गया, वीक हो गया। और कहती है दूसरे देखो अंडे, जो पहले तो थिन कवरिंग थी और अंदर से लिक्विड थे, मतलब जो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन परिस्थिति आने पर, लोगों से ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इतनी नेगेटिविटी होने से अंदर से कठोर बन जाते हैं। हाँ, बॉयल करने के बाद अंदर से वो पूरा प्रोटीन होता है ना, ला के दिखाना पड़ेगा। तो अंडा जो होता है ना लिक्विड होता है अंदर, और जब आप उसको बॉयल करते हो तो उसको तोड़ोगे ना तो कवर उसका टूटता है और बॉइल्ड एग होता है अंदर से, तो कठोर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते जो आई नो एकदम ही बेचारे तो कठोर हो जाते हैं। ऐसे लोग होते जिनको परिस्थिति आने पर, लोगों से व्यवहार पर, जो अच्छा व्यवहार नहीं था उनका, तो अंदर से इनका दिल जो है वो कठोर हो जाता है ना। और चौथे जो है, थर्ड जो है वो कॉफ़ी बीन्स, उसको पानी में गर्म किया तो वो कॉफ़ी बीन्स घुल मिल गई और उसकी खुशबू सब जगह फैलने लगी। थर्ड जो लोग होते हैं वो एडजस्ट हो जाते, वो मोल्ड हो जाते, जो अपना वातावरण है, जो पानी था उसी को चेंज कर दिया उन्होंने। तो ग्रैंड मदर बोलती है तुमको क्या बनना है इन तीनों में से, तो कॉफ़ी बीन्स। वो नहीं कि जो परिस्थिति आने पर कमज़ोर हो जाए या परिस्थिति आने पर हमारा ही नेचर चेंज हो जाए, हम इतने अच्छे प्यार वाले मिठास वाले और एकदम कठोर हो जाए, वो कॉफ़ी बीन्स की तरह होना चाहिए जो हमारे वातावरण को चेंज कर दे, अपनी विशेषताओं को, वो खुशबू जो है हमारी विशेषताओं की, गुणों की, उसको संसार में फैला दे जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो जैसे आज का टॉपिक है नेगेटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव सिचुएशंस में। तो नेगेटिव सिचुएशंस वो जहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा, और जिसमें अंधकार ही अंधकार है, जिसमें समझ ही नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े। तो सबसे पहले तो हम आप सबको पूछेंगे कि नेगेटिव सिचुएशंस ऐसी कौन सी नेगेटिव सिचुएशन एक्सट्रीमली नेगेटिव है जिसमें हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। जब बाबा के घर आना चाहते परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आने का नहीं मिल रहा है आने को, और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को बुरा ही लग रहा है। अब इसमें पॉजिटिव सोचना है और डेथ ऑफ माय क्लोजेस्ट, कोई मित्र संबंधी उनकी अगर मृत्यु हो जाए तो, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मल्टीपल ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स हो गया, लेग एम्प्यूट करना पड़ा, ऐसी कोई परिस्थिति। जब घर में सब नॉन वेजिटेरियन हो, अब क्लास के बाद मिलना आपको बताएंगे। हाँ, बिजनेस में घाटा हो जाए, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी बीमारी आ जाए, जैसे कि कोई कैंसर जैसी बीमारी आ जाए, इनक्योरेबल हो, और आप क्या करें, आप पॉजिटिव थिंकिंग करना है उसमें। हमने कोई गलती की नहीं लेकिन हमको लोग ब्लेम कर रहे हैं, अब उसमें पॉजिटिव सोचना है। और हाँ, संबंधों में बहुत टकराव, हाँ, मिसिंग द फ्लाइट, हाँ, हमको कहीं जाना है और हमारी फ्लाइट मिस हो जाए, अभी क्या पॉजिटिव सोचेंगे। हाँ, अचानक कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, हाँ, और बहुत सारे तो आपने बोले, हमने भी यही निकाले थे, कोई ना कोई फैमिली सपोर्ट ना मिले, जैसे उन्होंने कहा कि घर में सब नॉन वेजिटेरियन है, अलौकिक फैमिली में ऐसा कुछ हो, ऊपर नीचे हो जाए, जो देखकर हमारा मन हलचल में आने लगे कि ये क्यों हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हैंडीकैप हो जाए, अब उसकी आगे की पूरी जिंदगी बाकी है, कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे उत्तराखंड में हुआ था, लाखों लोग मर गए, उसमें हमको पॉजिटिव सोचना है। अगर हमारा ही कोई, यहाँ बैठ के न्यूज़ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारा ही कोई वहाँ पर गया हो और चला गया, तो पॉजिटिव सोचना है, है ना। यहाँ से जैसे रेस्क्यू टीम गई थी, वो देख रही थी कि लाशें ऐसे पानी में जा रही है, उस सीन को देखना और उसको सोचना है क्या पॉजिटिव है इसमें। जैसे मैं कहा कि कोई इनक्योरेबल बीमारी हो जाए और कोई सपोर्ट ही ना हो, फ्रेंड्स का नहीं, फैमिली का नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, बिजनेस लॉस, रिलेशनशिप्स में हमने किसी पे बहुत भरोसा किया लेकिन उस व्यक्ति ने हमको धोखा दे दिया, अब क्या पॉजिटिव सोचेंगे। ज्ञान में हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई विघ्न आ जाए, जैसे कहा ना, जैसे बाबा को मिलने आना है लेकिन नहीं हो रहा है, कितनी नेगेटिविटी, हमारी तो बड़ी इच्छा है आने की लेकिन हमको आने नहीं मिल रहा, तो ये कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं, है ना। तो अब हम ऐसी कोई लाइफ स्टोरीज देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि उन लोगों ने क्या किया और हमको क्या करना है। बहुत बार हम ये सारी सिचुएशन में क्या बोलते हैं, हिसाब किताब है, ड्रामा कल्याणकारी है, हाँ, किसी और पे होता है तो उसको समझाते ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में ऐसे ही लिखा है, वो आत्मा ने आपको धोखा दिया ना, तो हिसाब किताब होगा आपका, हाँ, पहले आपने कभी धोखा दिया होगा, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो तो कहेंगे पहले उसने आपकी सेवा की होगी, हमारे उत्तर ऐसे होते हैं, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग इतने जल्दी नहीं होती जब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीमली नेगेटिव है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है अनुरिमा सिन्हा, सुना होगा ना उसके बारे में। अनुरिमा सिन्हा की कहानी ऐसे है कि ये वॉलीबॉल प्लेयर थी नेशनल लेवल पर, और ट्रेन में, हाँ जी, तो नेशनल लेवल प्लेयर थी और कोई एग्जाम देने के लिए ये लखनऊ से दिल्ली जा रही थी ट्रेन में, और कुछ चोरों ने उसको उसकी चेन खींचने की कोशिश की और उसकी बैग, यहाँ तक कि दूसरे लोग बैठे थे लेकिन उन्होंने उसको साथ नहीं दिया, और जब इसने रेजिस्ट किया तो इसको धक्का दे दिया गया ट्रेन से, और ये कहती है कि मैं ट्रेन के बाहर गिर गई और दूसरी ट्रेन से धक्का लगा और नीचे गिर गई, और जब उठने की कोशिश की तो कहती है कि मेरे पैर ही नहीं थे, और वो रात भर पटरी पर पड़ी रही, ट्रेन जाती गई जाती गई, लोग देखते गए लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, बोल रही है रात भर ऐसा होने लगा कि फिर मुझे दिखने भी नहीं लगा, और रात में फिर चूहे आने लगे और चूहे उसके पैर को कतरने लगे, इतनी बुरी सिचुएशन, और फिर सुबह में कुछ गांव वाले लोग थे वो उसको हॉस्पिटल में लेके गए नज़दीक के, और जब नज़दीक के हॉस्पिटल में इसको लेके गए तो वहाँ पर ना ही एनेस्थेटिस्ट था ना ही कोई ब्लड की सुविधाएं थी, क्योंकि उसको इतना ब्लड लॉस हो गया था, वो सुन रही थी डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे थे लेकिन उसमें जीने की इच्छा थी, तो उसने कहा कि मेरा ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बिना कर दो. और वह कहती है कि मेरे दोनों पैर के ऑपरेशन, एक तो पैर काट दिया गया, एक पैर में रॉड गई, उसके रॉड डाली गई बिना ऑपरेशन के, बिना एनेस्थीसिया के. उतना पेन उसने सफ़र किया. और फिर उसको एम्स हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला. अब इतनी बड़ी परिस्थिति, अभी वो कहती है कि मैं क्योंकि स्पोर्ट्स प्लेयर थी इसलिए मुझे ऑपरेशन और सहयोग और ये सब ट्रीटमेंट चल रहा था. लेकिन आहिस्ते आहिस्ते न्यूज़ में आने लगा कि अनिरुमा ने सुसाइड किया है और अभी वो उसको पैसे चाहिए इसीलिए वो ऐसा बयान दे रही है. तो उसके बारे में ऐसे सब न्यूज़पेपर में आने लगा. लेकिन वो कहती है कि मैंने हार नहीं मानी. इतनी बड़ी सिचुएशन, वो कहती है कि मैं कोई बुक में से कोट नहीं कर रही, लेकिन उसने युवराज सिंह के बारे में पढ़ा था जिसको कैंसर हुआ था. और वो कहती है कि मैंने एम्स हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगी. और 2011 में ये हुआ और 2013 में वो चढ़ी. तो फिर ग्रेजुअली उसने फंड्स जमा किए बहुत सारे. और फिर जिन जो महिला सबसे पहले एवरेस्ट चढ़ी थी उसको उसने कॉल किया और उससे वो मिली कि मैं आपके अंडर ट्रेनिंग लूँगी. तो उस महिला ने उससे क्या कहा कि तुम तो ऑलरेडी एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, अब तो सिर्फ तुम लोगों को दिखाओगी चढ़ के. और जब चढ़ने भी गई तभी भी वो कहती है कि इतनी मुश्किल होती थी क्योंकि ना एक लेग प्रोस्थेटिक था तो ब्लड होता, ब्लड निकलता था, दूसरे में रॉड. वो कहती है कि ट्रेनिंग में जो लोगों को 3 मिनट लगते थे मुझे 3 घंटा लगते थे चढ़ने को. लेकिन ग्रेजुअली इतना उसमें विल पावर था कि उसने गिव अप ही नहीं किया. फिर बाद में वो उनसे पहले जाने लगी तो लोग उसको पूछते थे तुम क्या खाती हो जो तुम ऐसे पैरों के साथ चल रही हो. और फिर वो ऊपर तक पहुंची, उसका ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा था, उसका जो कोच था उसको बोला वापस चलो, उसने कहा नहीं अब मैं वापस नहीं चलूँगी. और वो पहुंचती और इंडिया का फ्लैग वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करके आई है वो. तो यही बात है कि इसके लाइफ से हम क्या सीखेंगे. इतनी नेगेटिव सिचुएशन थी इसके लाइफ में, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए क्या चाहिए था, विल पावर, है ना, कि उसकी इच्छा जो थी ना कि मुझे करके दिखाना है. और उसने वहाँ पे जाके अपने फोटो भी खींचे और कोच को बोला वीडियो रिकॉर्डिंग. वो बोल रहे हैं ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है चलो वापस, नहीं तो तुम वापस भी नहीं पहुँच पाओगे. उसने कहा कि एटलीस्ट मेरा वीडियो पहुँचा देना, तो इंडिया के यूथ से वो मुझसे सीखेंगे. तो बात ये थी, हमने सोचा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले हमारे में विल पावर चाहिए. वो जो इच्छा होती है ना, अगर वही नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे आगे. इतनी बड़ी परिस्थिति जिसके दोनों पैर नहीं है, हम तो अपने दो पैर के साथ अरावली माउंटेन भी नहीं चढ़े यहाँ पे अभी तक, तो वो तो एवरेस्ट चढ़ के आई. तो सबसे पहले हमको लगता है कि विल पावर. दूसरा, जैसे अनुरिमा ने पढ़ा युवराज सिंह के बारे में, है ना, ये क्रिकेटर, तो इसको भी हुआ था कैंसर. ये वर्ल्ड कप के मैचेस चलते थे तो रात में आके इसको बहुत खांसी होती थी. इतनी खांसी होती थी कि इसको सोने नहीं होता था. लेकिन इसने भगवान को कहा कि भगवान मुझे कप दे देना, उसके बदले में जो चाहिए वो ले लेना. और फिर वो कप जीत के उसके बाद इनके इन्वेस्टिगेशंस हुए और पता चला कि ट्यूमर है, मीडियास्टाइनल ट्यूमर, जो कि एक प्रकार का कैंसर. अब किसी को अगर कैंसर की बीमारी होती है तो इंसान ऊपर से लेकर नीचे तक कांपता है कि कैंसर हो गया. लेकिन युवराज सिंह ने लिखा कि डू नॉट बी स्केर्ड, थिंक पॉजिटिव, डरना नहीं है. तो सेकेंड थिंग हम इनकी कहानी से सीखते हैं कि फियर, ये फियर जो है ना वो भी एक विकार है, ये हमको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देगा. उसने कहा कि मैंने इस ट्यूमर के बारे में पढ़ा, मैं सही लोगों के पास गया और फिर US में इसका ट्रीटमेंट हुआ. और ये एक व्यक्ति है लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसको भी ऐसा ही एक ट्यूमर हुआ था, उसके बारे में वो पढ़ने लगा. और फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट चला और कैसे आके इसने फिर कैंसर के कैंपेन्स किए, इन्होंने एक बुक लिखी फिर उसके बारे में, डील विद गॉड. तो ये लोग कितने सक्सेसफुल हुए. जैसे अनुरिमा को भी पद्मश्री अवार्ड मिला, है ना, तो इतनी बड़ी परिस्थिति के बाद भी इतना अचीवमेंट. तो जैसे उसके पास विल पावर था, इन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी होने पर भी जो फियर है ना वो नहीं आना चाहिए. अगर उसमें डर आ जाता तो वो कुछ नहीं कर पाता. उसका US में कीमोथेरेपी चला, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया. तो उन्होंने लिखा है कि उसके बारे में जानो, है ना, अगर जैसे सिचुएशन आ गई है तो उसके बारे में जानो कि हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड कि हम डर के वहीं रह जाएं. तो सेकंड थिंग, हमारे पास फियर नहीं होना चाहिए, तभी पॉजिटिव थिंकिंग होगी. थर्ड एग्जांपल है वसीम अकरम. वसीम अकरम क्रिकेटर, इसको डायबिटीज है ना, जब ये अपनी क्रिकेट खेलते थे तो पता चला कि इनको डायबिटीज़ है। और पहले तो ये बहुत डर गए कि इनको डायबिटीज़ है, और सोचा कि अभी मेरे करियर का क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, और लिटरली ऐसे डिप्रेशन में। लेकिन फिर उसकी वाइफ ने उनको मोटिवेट किया, फिर उन्होंने भी बहुत सारे कैंपेन्स किए डायबिटीज़ के बारे में। तो हाउ ही बैटल डायबिटीज़, तो उसमें था कि अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसका सल्यूशन है ना। तो जैसे कि हमारा कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए कि आ तो गई, अब एक्सेप्ट किया। पहले तो एक्सेप्टेंस नहीं होता है कभी, जैसे इनक्योरेबल डिजीज़ आ गई, जैसे कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बीमारी जो हमसे एक्सेप्ट नहीं करी जा रही। लेकिन जब तक हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक हम उसके सल्यूशन पर नहीं पहुँच सकते। तो इन्होंने भी यही किया कि एक्सेप्ट किया, उसके बारे में पढ़ा, और फिर कैसे कंट्रोल की डायबिटीज़ को। तो ये सब ऐसे, ये मेन फिगर्स है जिनके बारे में आपको कहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मोटिवेशनल पीपल जिनकी स्टोरीज सुन सुन के ऐसा लगेगा कि इनको ये हुआ, इनको ये हुआ, कितने लोगों को अवार्ड्स मिले। तो इनके जीवन से सीखने की ये बात है कि इनके जीवन में विल पावर थी, इसलिए पॉजिटिविटी, फियर नहीं था। इनका अप्रोच एक था कि सल्यूशन, नेगेटिविटी तो आ गई लेकिन इसका आगे नेक्स्ट क्या, तो सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कौन फेस करता है? जो लीडर होता है। और क्या उत्तर आता है मन में, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसको फेस करना पड़ता है? ब्राह्मणों को, जो कोशिश करता है वो तो अच्छा है ना, वो निराश नहीं होता, उसको फेस करना पड़ता है। नहीं, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके सामने है? हाउसवाइफ। अच्छा, सब कुछ करते फिर। एक्चुअली क्या होता है, अपने को अपनी परिस्थिति सबसे भारी लगती है, अपने को लगता है मेरी ही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है, दूसरे की तो कुछ नहीं है। वो सल्यूशन में जब हम आएंगे ना, इस पर बात करेंगे, तो हमको लगता है सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बाबा को फेस करनी पड़ती है। देखो, भगवान संगम युग पर आता है और देखता है कि मैंने इनको सजा के सवार के सत्युग में भेजा था, अब ये तो मेरे को पहचान भी नहीं रहे, ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे पहचान भी नहीं रहे। एक पेरेंट के लिए इससे ज्यादा नेगेटिविटी क्या हो सकती है कि उसके बच्चे ही उसको ना पहचाने, है ना। हाँ, इसीलिए वो पॉजिटिव थिंकिंग उसकी ये है क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है ना। तो बाबा अपसेट नहीं होता, है ना, बाबा पूरी कोशिश करता है। हाँ, तो बाबा अपसेट नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिविटी उसके सामने है ना कि पूरी दुनिया अलग है, वो किसी और के राज्य में आएगा अभी और अपना राज्य उसको स्थापन करना है। वो जो पवित्रता पे बोल रहा है, दुनिया कहती है काम विकार में सुख है, वो जो बोल रहा है उसके ऑपोजिशन में यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी एक एक कोने से वो हमको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है पूरी दुनिया से, कितना काम कर रहा है ना, फिर भी हार नहीं मानता। फिर भी हार नहीं मानता बाबा, है ना, फिर भी अपसेट नहीं होता बाबा। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि बाप किसी से नफरत नहीं करता, तुमको भी किसी से नफरत नहीं करनी है। हमको ऐसी स्थिति में देख के भी हमसे नफरत नहीं कर रहा, अगर हमसे गलती भी हो जाती है तो भी हमको प्यार करता है। तो बाबा है जो इसके सामने इतनी बड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन उसकी पॉजिटिव अप्रोच, जैसे कि वो त्रिकालदर्शी है, उसको पता है कि अभी ये होने वाला है, तो वैसे ही पॉजिटिव थिंकिंग। एक पर्सनल एक्सपीरियंस एक कुमार का सुना था, डॉक्टर है वो। वो कह रहे थे कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होती है, अगर डॉक्टर नहीं और पेशेंट आया और डेथ हो गई तो ये हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो क्या हुआ, वो डॉक्टर निकल गया और दूसरा डॉक्टर आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, और जो डॉक्टर पेशेंट को कैजुअलिटी में लाया गया वो एक्सपायर हो गया। और जब वो एक्सपायर हो गया तो बहुत मॉब आ गया वहाँ पे, बहुत सारे 50-60 लोग आ गए और अभी खड़े थे कि ये डॉक्टर पहुँचेगा और अभी इसको क्या करते हैं इसका, ऐसा था। और इन तक ये बात पहुंची और है ना, ट्रैफिक बहुत थी, ये अपनी कार में आ रहे थे कि देखो अभी आप पहुंचेंगे और ऐसा होगा, अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, लोग तो तोड़फोड़ करेंगे, शायद उनको मार भी देंगे, इतनी सारी बड़ी परिस्थिति, कितनी नेगेटिव सिचुएशन है कि 10 मिनट लेट होने पर ये हो गया। इन्होंने क्या किया, ये बाबा के बच्चे हैं, तो इन्होंने कहा कि बाबा ये हॉस्पिटल तेरा है और तू देख इस हॉस्पिटल को, और उनकी आग बंद हो गई क्योंकि ट्रैफिक थी। और 20 मिनट के बाद जब आग खुली और पहुंच रहे थे तो पता है क्या हुआ वहाँ पे, वो जो लोग थे ना उसके सामने एक बूढ़ा बाबा आया, वो लकड़ी वाला ट्रॉली लेता है, वो ट्रॉली लेके आया एक बूढ़ा बाबा वहाँ पे, और वो कहता है कि क्या हुआ, जाने दो ना, अभी छोड़ो, अभी चलो जाएंगे, लड़ झगड़ के क्या फ़ायदा, जो हो गया वो हो गया। और इतने 50-60 लोग थे, उनको साथ में लेके चला गया वो। तो मतलब ये बूढ़ा बाबा कौन था, है ना, तो वो लेके चला गया। तो इतना नेगेटिव सिचुएशन में इस व्यक्ति ने क्या किया, ये बाबा के बच्चे ने बाबा पे सरेंडर किया, है ना। कभी कभार हम अपनी परिस्थिति से खुद लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पर ये है कि बाबा पे सरेंडर होना, बाबा पे समर्पण करना, उतना फेथ होना चाहिए बाबा पे कि बाबा मुझे हेल्प करेगा। तो इन्होंने जैसे किया, इतनी बड़ी परिस्थिति थी ये कि वो हॉस्पिटल जा सकता था लेकिन नहीं गया क्योंकि बाबा पर इतना फेथ था, बाबा पर छोड़ दिया उस चीज़ को। तो ये एक सिचुएशन थी। और जैसे हमने कहा कि अगर रिलेशनशिप्स में धोखा हो जाए, अगर हम कोई संबंध में या किसी डिपार्टमेंट में हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, या कोई हाउसवाइफ है, उसका कोई हस्बैंड है, है ना, तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि धोखा मिले तो क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव, वो अनलकी है। तो किसी ने इसका उत्तर दिया कि आपकी ज़िंदगी में और अच्छे लोग आने वाले हैं, तो अच्छा है वो गया ऐसे। और अगर जैसे हम किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अपना सब कुछ सिंसियरिटी से करते हैं, बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, फिर भी हमको सामने वाले से बिट्रेल मिलता है, धोखा मिलता है, तो यही सोचना चाहिए कि उसको हमारी वैल्यू नहीं है, आई एम नॉट वर्थ हिम, ऐसा सोच सकते कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है ना इधर अभी, कि है ना यही बात है कि हमारी जो वैल्यू है उनको नहीं है अभी। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि जब अगर व्यक्ति हमको वापस देता है ना प्यार, अगर हम कुछ करें सामने वाला हमको प्यार देता है, तो फिर वही व्यक्ति हमको अच्छा लगने लगता है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा है थोड़ा सा धोखा दिया, तो हमारी नज़र फिर बाबा की तरफ जाती है, नहीं तो फिर उसी को है ना सब कुछ मानते हैं कि इसको हमने इसके लिए ये किया, इन्होंने हमारे लिए ये किया। जब ऐसा नहीं होता है तब बाबा से प्यार बढ़ता है। तो इसको इस तरह से पॉजिटिवली लेना, अगर कोई युगल है, बहुत दोनों में बहुत प्यार है ना, तो बाबा फिर दूर जाता है। अगर बाबा को बीच में लाना है तो ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो बहुत अच्छा है। अभी हाउ टू थिंक पॉजिटिव, ये तो कोई सिचुएशंस हो गए, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो एक अप्रोच है कि डू नॉट परसीव एज नेगेटिव, उसको नेगेटिवली सोचो ही नहीं कि वो नेगेटिव है। जैसे बाबा सोच ही नहीं रहा ना नेगेटिव है, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भी इतनी सिचुएशंस थी, बाबा ने उसको नेगेटिवली सोचा ही नहीं, है ना, उस परिस्थिति को। जैसे हापुड़ में जो प्रॉब्लम हुई थी, इतने अपोजिशंस हुए और बाबा तक जब न्यूज़ गई तो बाबा ने क्या कहा, नथिंग न्यू। बाबा से कहा कि बाबा बच्चों को वापस बुला दे, तो बाबा ने बोला नहीं वहीं रहने दो, वरना कोई ऐसा होएगा कि है ना उसके बच्चे वहाँ पे सफ़र कर रहे और वो बोले नहीं वहीं रहो। तो बाबा को पता था कि क्या होने वाला है आगे, तो नथिंग न्यू। जैसे कि इसमें हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हमको सब कुछ पॉजिटिव दिखे, इसमें हमारा नज़रिया। एक बार एक किसान होता है, वो जो खेत है ना उससे घर जाने के टाइम पर दो घड़े लेके जाता है पानी के, और ऐसा डंडा, और एक तरफ एक घड़ा, एक तरफ एक घड़ा, पानी भर के वो अपने घर तक जाता है। लेकिन क्या होता है, घर पहुंचने तक उसके पास सिर्फ डेढ़ घड़ा पानी रहता है, क्योंकि जो दूसरा घड़ा होता है उसमें एक छेद होता है पानी, तो वो पानी छलकता हुआ पहुंचता है, तो डेढ़ घड़ा ही पहुंचता है पानी का। तो जो घड़ा पूरा पहुंचता है उसको बड़ा ईगो रहता है कि मैं पूरा पानी पहुंचाता हूँ, और जो दूसरा घड़ा है जिसमें छेद है उसको ऐसा फील होता है कि बहुत मायूस होता है कि मैं पूरा पानी नहीं पहुंचा सकता। तो वो किसान को एक दिन कहता है, एक दो साल बीत जाते हैं ऐसे, तो वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहता है क्या, तो कहता है कि ना मेरे में, आपको पता नहीं, मेरे में ना एक कमी है, मेरे में छेद है, इसलिए आप पूरा घड़ा पानी नहीं पहुंचता घर तक, और है ना डेढ़ घड़ा ही पहुंचता है। तो किसान मुस्कुराता है और कहता है कि कल जब हम खेत से वापस लौटेंगे तो तुम है ना फूलों को देखना, जो नीचे फूल है ना रंग बिरंगी फूलों को देखना, झाड़ों को देखना, ठीक है। तो ऐसे फिर नेक्स्ट डे वो देखता है और वो घड़ा पानी का देखते हुए बड़ा खुश होता है, रंग बिरंगी फूल इतने खुशबूदार इतने खिले हुए, लेकिन घर पहुंचने तक वही आधा घड़ा बचा। तो फिर वो मायूस होता है और कहता है कि देखो आज भी मेरा पानी आधा ही पहुंचा, आधा घड़ा ही पहुंचा, पूरा मैं नहीं पहुंचा पाया। तो किसान कहता है कि तुमने ठीक से देखा नहीं। तो बोले क्या, तो है ना किसान कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें ये कमजोरी है, इसलिए मैंने आपके रास्ते पे बीज बो दिए थे, और जब हम रास्ते से आते थे तो तुम पानी छलकाते थे उस पे, और आज उस साइड पे रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं और जो पूरा घड़ा भरा हुआ है उसके साइड पे फूल ही नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मैं यही फूलों को भगवान को अर्पित करता हूँ, और मेरा जो घर है इतना सुंदर फूलों से सजा हुआ ये तुम्हारी वजह से ही है। तो कहानी में भी देखो घड़ा जो है वो नेगेटिविटी देख रहा है और किसान उसको बता रहा है कि पॉजिटिविटी क्या है। तो इसी तरह से जीवन में हमारे सामने हमको ऐसा लगता है सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ धुंधला है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है जो हमको नहीं समझ में आती, जो बाबा को एक्चुअली पता होता है कि ये ऐसा है। तो हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की हमको आदत डालनी पड़ेगी, ये एक है। नेक्स्ट थिंग हमने सोचा फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस होना चाहिए, जैसे लचीलापन जिसको हिंदी में कहते हैं, कि जैसे कि वो एग जो है वो कैसे कठोर हो गया अंदर से, और कॉफ़ी बीन्स कैसे पानी में घुल मिल गई, वो फ्लेक्सिबल थी, उसको जैसी सिचुएशन आई उसके साथ मोल्ड होना, उसके साथ एडजस्ट होना, ना कि ऐसे कि अंदर से कठोर बन जाना। तो ये भी हमको सीखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी अगर सोचनी है तो ये वैल्यूज़ हम में होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम कब एडजस्ट हो, कब मोल्ड हो जाए, कब हमको झुकना आना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव सोच पाएंगे। अगर हम अपनी अकड़ में और अपने ही अहंकार में खड़े रहेंगे तो कभी नहीं सोच पाएंगे। हाँ, अब बहुत पुराने हो गए अभ्यास। तीसरी बात जीवन में, अगर अगर हमको यहाँ पे कोई जोक सुनाए और कोई बार बार एक ही जोक सुनाए तो हंसी आएगी। अगर मैं एक ही जोक सुनाऊँ, अगर मैंने ये कहानी सुनाई तो सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यही कहानी चार पांच बार सुना दूँ तो कुछ मज़ा नहीं आता है। वैसे ही जोक सुनाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा चार पांच बार सुनाने के बाद। इसी तरह से जीवन में जब नेगेटिव सिचुएशन आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वही सिचुएशन रोज़ होती है, वही डिपार्टमेंट में हम रोज़ जाएंगे अच्छा काम करेंगे लेकिन हमारा बॉस हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो रोज़ आती है हमारे जीवन में। अब जब हम जोक्स पे हंसते नहीं हैं तो कहते हैं कि फिर जब नेगेटिव सिचुएशन है उस पर क्यों हम रोते हैं, क्यों हम एवरीडे रोते हैं और कोसते उस बॉस को कि क्यों ये ऐसे करता है हमारे साथ, है ना। तो उधर भी यही सोचना कि जब हम जोक्स पे नहीं हंस सकते बार बार, तो जब हमारे जीवन में इतनी नेगेटिविटी आती है तो हम क्यों बार बार उस पर रोते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग चालू होगी। और एक है कि हमारे पास चॉइस होती है हमेशा, जब भी कोई सिचुएशन आती है हमारे सामने हमारे पास चॉइस है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। जैसे कि अगर आप प्लेन में जाते हो, है ना, टेक ऑफ और लैंडिंग तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जर्नी में जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोई लोग खाते पीते हैं, कोई लोग बात करते हैं, कोई लोग सो जाते हैं, कोई लोग अपने लैपटॉप पे बिजी होते हैं, कभी टर्बुलेंस आता है प्लेन में तो कोई लोग डरते हैं, कोई लोग उसको भी इंजॉय करते हैं, है ना। तो जीवन भी ऐसे ही है, चॉइस है हमारे पास कि हमको पॉजिटिवली सोचना है या नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिविटी में ही जाना है। ये जो व्यक्तियों की कहानी हमने सुनी इनके पास भी चॉइस थी ना, ये घर बैठ सकते थे। अनुरिमा के पास भी चॉइस थी, वो जिंदगी भर बेड पर लेट सकती थी, लेकिन आप उसका इंटरव्यू देखेंगे तो इतने इतने उसके इतने जज्बात और जुनून से वो बात करती, इतनी पैशनेट है वो, कि सीखने मिलता है कि देखो ये अज्ञानी लोग हैं और ये इतने आगे, और हमारे पास भगवान है, हमारे पास ज्ञान है, और हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम कितने मायूस हो जाते हैं। तो हमारे पास चॉइस है। और जैसे हमने कहा कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सिचुएशंस को, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। एडिसन की कहानी भी पता होगी, एडिसन जो साइंटिस्ट था उसकी फैक्ट्री पूरी जल गई थी, लेबॉर्ट्री, और उसने क्या किया, जब लेबॉर्ट्री जल रही थी तो उसका बेटा भाग रहा था और एडिसन हाथ जोड़ के खड़ा था और देख रहा था मुस्कुराते हुए फैक्ट्री जलते हुए। तो बेटा पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो। तो वो कहता है जाओ माँ को बुला के आओ। तो कहता है क्यों? तो जब माँ भी आती है तो सब भागने लगते हैं। वो कहता है कि देखो मैं अपनी मिस्टेक्स को जलते हुए देख रहा हूँ, जो जीवन भर मैंने जो मिस्टेक्स की है ना वो सब जल रही है अभी, अब मैं नए सिरे से चालू कर रहा हूँ। 67 ईयर्स ओल्ड, जीवन भर की उसकी जो रिसर्च वो सब जल रही है। आज हमारी एक बुक घूम जाएंगी तो क्या होगा हमारा? आज हमारी मुरली हमको नहीं मिलेगी तो, मुरली का बंडल मिलता है रोज हर महीने 15 दिन का, वो अगर चला जाए तो हम कहाँ गई मुरली, कहाँ गई मुरली, है ना? कैसे होता है? तो सर्च अदर वेज कि कैसे मिलेगी वो मुरली, लेकिन हम तुरंत नेगेटिविटी में जाते हैं उसमें भी। दूसरा, उस दिन एक गीत बज रहा था, अपनी चिंतन की धारा बदल दो, है ना? तो कहते कि चिंता जो है ना हमको हर पल मारती है, जलाती है, तो इसीलिए चिंता नहीं करनी है किसी भी सिचुएशन की। लाइट रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत जोवियल रहना है, रमणीकता से हर सिचुएशन को हैंडल करने सीखना है। तो ये एक है। और जैसे हमने कहा ना कि हमको दूसरों की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है, लेकिन कभी कभार इस वाक्य को ऐसे लो कि हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है सामने वाले के सामने। जैसे कि देखो किसी को बहुत एसिडिटी हो रही है, वो बोलेगा मुझे बहुत एसिडिटी, बहुत गैस हो रही है, बहुत गैस हो रही है। उसके बारे में सोचो जिसके पेट में कैंसर है और जो कीमोथेरेपी पे, आपकी सिचुएशन बहुत छोटी लगेगी, है ना? बहुत बहुत वो होते पेशेंट्स की बहुत एसिडिटी, बहुत एसिडिटी। अरे ठीक है, ट्रीटमेंट है उसका, उसके पास तो ट्रीटमेंट भी नहीं है। किसी का सिर बहुत दुख रहा है, सिर दुखता है, सिर दुखता है। किसी के ट्यूमर है सिर में, आपके पास वो तो नहीं है ना? तो अपनी सिचुएशन को उनकी सिचुएशन से देखो और फिर कंपेयर करो, तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि हाँ उसके पास तो इतनी बड़ी सिचुएशन है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। अभी हम 10 मिनट के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, करें? ये पेपर आपके पास देंगे। हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं जो अभी भी चल रही है, उस नेगेटिव सिचुएशन को इस पेपर पर लिखना है, ठीक है? और उस पर एक मार्क बना देना है पीछे, जिससे आप आपका पेपर आइडेंटिफाई कर सके। उस नेगेटिव सिचुएशन को लिख देना है और उसको क्रम्पल करके बीच में आके फेंक देना है, ठीक है? और फिर उसके बाद रैंडमली कोई भी आके कोई भी पेपर उठाएगा, और जो व्यक्ति ने वो नेगेटिव सिचुएशन लिखी है, अब आप उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग बताएंगे कि उस नेगेटिव सिचुएशन में क्या पॉजिटिव सोचे, समझा? तो पहले नेगेटिव सिचुएशन लिखनी है, एक मार्क कर देना है और फेंक देना है आके। फिर वापस रैंडमली हम आएंगे और पेपर उठाएंगे, नाम नहीं लिखना है, मार्क कर देना है जिससे आपको पता चले आपका पेपर कौन सा है। जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति जो अभी चल रही है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं पा रहे, अपनी अपनी लिखना, अपनी अपनी लिखना। सबके पास कुछ ना कुछ तो होगी जरूर, चल छोटी से छोटी होगी, उसको लिख देना आज, और बाबा को याद करके लिखना कि जो भी व्यक्ति इस पे पॉजिटिव थिंकिंग लिखेगा मेरे लिए, वो मेरे लिए काम आएगी, है ना? जैसे दूसरा व्यक्ति लेगा आपका कागज और उस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग लिख के देगा आपको, जो शायद आप नहीं सोच पा रहे। तो सबको अपना अपना सोल्यूशन मिल गया। सुशील भाई आपको क्या मिला? सुशील भाई ने कोई सिचुएशन ही नहीं लिखी थी, फिर भी उनको कुछ लिख दिया किसी ने। तो लिखा है कि अगर आपके पास समस्या नहीं है तो भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पास कोई वरीज नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और हम ऐसे भी कहते हैं कि जब समस्या हमारे पास आती है जीवन में तो वो आगे बढ़ाने के लिए आती है, तो स्ट्रगल्स जो है वो हमें स्ट्रेंथ देने के लिए आती है, ठीक है? ओके, ओम शांति।